स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 23 फरवरी और दिन मंगलवार। आज से संसद का बजट सत्र होगा शुरू। सरकार का दावा है पूरी तरह से तैयार।
रोज इश्यूज रेज करने के लिए हर एक को मौका है, मगर रूल्स के मुताबिक इश्यूज रेज करें, डिस्कस करें, डिबेट, डिस्कस, डिसाइड, डू नॉट डिसरप्ट, ये हमारा अपील है।
हरियाणा में जाट आंदोलन जारी, कई जगहों पर हुई हिंसा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पत्रकारिता करना कितना है मुश्किल?
देखिए, बस्तर में पत्रकारिता करना एक बहुत बारीक लकीर है, तलवार की धार पे चलने के जैसा। कंपनी ये मांग करती है कि आप बस्तर में हैं तो कुछ एक्सक्लूसिव लाएं।
अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सहयोग की उम्मीद जताई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने भी बजट सत्र की सफलता के लिए सभी दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। रोहित वेमुला, जेएनयू और जाट आरक्षण जैसे विवादों में घिरी सरकार का ये संसदीय सत्र भी शोरगुल से भरा होने की संभावना है। सीरिया में आंशिक युद्ध विराम के रूस और अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य के कुछ देर बाद ही सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने संसदीय चुनावों की घोषणा भी कर दी। उनके अनुसार ये चुनाव अप्रैल में किए जाएंगे। सीरिया में पिछले चुनाव 4 साल पहले हुए थे। दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव के तहत 18 महीने के बदलाव के दौर में चुनाव होने चाहिए और इस अवधि में गृह युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने पर निर्णायक बातचीत होनी चाहिए। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि अमरीकी सुरक्षा एजेंसी एफबीआई के बरक्स एप्पल कंपनी ने जो रुख लिया है वो उसके लिए एप्पल के प्रमुख टिम कुक से सहानुभूति रखते हैं। एफबीआई ने एप्पल को आदेश दिया था कि वो एक मृतक हत्यारे के आईफोन के सुरक्षा सॉफ्टवेयर को निरस्त कर दे, लेकिन टेक्नोलॉजी कंपनी ने इससे इनकार कर दिया। जकरबर्ग ने कहा कि वो भी चरमपंथ को रोकने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि अधिकारियों को एन्क्रिप्शन सुरक्षा को लांघना चाहिए। गूगल और ट्विटर ने भी एप्पल के इस फैसले का समर्थन किया है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवार टेड क्रूज ने अपने चुनाव अभियान के प्रवक्ता को निकाल दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए टेड क्रूज ने कहा कि उन्होंने रिक टायलर को इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के एक अन्य उम्मीदवार मार्को रूबियो के खिलाफ एक नकली वीडियो पोस्ट किया था। कल हमारे अभियान के एक कर्मचारी ने एक खबर के बारे में ट्वीट किया जिसमें इस बात के संकेत थे कि मार्को ने बाइबल के बारे में कुछ नकारात्मक बातें कही हैं। वो खबर झूठी थी। उस कर्मचारी ने ट्वीट को हटा दिया और माफी मांगी। हालांकि आज सुबह मैंने ये पता लगाया कि दरअसल हुआ क्या था और तब मैंने रिक टायलर से इस्तीफा देने को कहा। ये थे टेड क्रूज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील की है कि पूर्वी यूक्रेन के संदर्भ में वो मिन्स्क समझौते का आदर करें। व्हाइट हाउस ने कहा कि फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ओबामा ने इस बात पर जोर दिया कि रूस और अलगाववादी बल युद्ध विराम का सम्मान करें और एक विशेष निगरानी मिशन को संघर्ष क्षेत्र तक पहुंचने दें। राष्ट्रपति ओबामा ने पूर्वी यूक्रेन में जल्द ही चुनाव कराने पर समझौते की अहमियत का भी जिक्र किया। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है फरवरी की 23 तारीख और दिन मंगलवार। कार्यक्रम की शुरुआत बजट सत्र से। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों से सदन चलाने में सहयोग की अपील की। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार से कहा कि वो बजट सत्र के दौरान अपने वादे निभाए और सहमति के आधार पर ही सदन में बिल पेश करे। पूरी जानकारी के साथ एक रिपोर्ट प्रभात पांडे से।
संसद के आज से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने विपक्ष को भरोसा दिलाया है कि वो सदन में हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। संसद के पिछले 2 सत्रों यानी मॉनसून और शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बने गतिरोध की वजह से खास कामकाज नहीं हो सका था। खासकर राज्यसभा में कई अहम बिल पास नहीं हो सके। इस बार भी विपक्ष जेएनयू विवाद, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी, पठानकोट पर हुए हमले, केंद्र सरकार की पाकिस्तान नीति और जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। बजट सत्र को लेकर कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन में बहस, चर्चा और निर्णय होने चाहिए, व्यवधान नहीं।
मुद्दा ये तो देश बड़े बहुत बड़ा है, बहुत मुद्दा होंगे, मुद्दाओं के बारे में चर्चा करना है, इसलिए पार्लियामेंट है। रोज इश्यूज रेज करने के लिए हर एक को मौका है, मगर रूल्स के मुताबिक इश्यूज रेज करें, डिस्कस करें, डिबेट, डिस्कस, डिसाइड, डू नॉट डिसरप्ट, ये हमारा अपील है।
संसद के सत्र के दौरान 25 फरवरी को रेल बजट और 29 फरवरी को आम बजट पेश होगा। सर्वदलीय बैठक में सरकार की अपील के जवाब में कांग्रेस ने कहा कि सदन को सुचारू तरीके से चलाने के लिए सरकार को विपक्ष से किया गया वादा निभाना होगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
जो भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हमसे वायदा किए हैं कि उन सभी मामलों पे चर्चा होगी और जो भी कंट्रोवर्शियल बिल है वो इस वक्त नहीं लाने के लिए हमने कहा, और जो सब सर्वसम्मति से जो भी बिल होगा वही हम पारित करेंगे और दूसरे बिल वो मार्च के बाद अप्रैल में जो लेना है तो सभी से कंसेंसस लेकर उसको पेश किया जाए।
सर्वदलीय बैठक में आम सहमति बनाने की कोशिश करने वाली सरकार बीते दो सत्रों में कामकाज नहीं हो पाने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त पहले आरोप लगाया था कि एक परिवार सदन नहीं चलने देता। प्रधानमंत्री ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन माना गया था कि उनका संकेत कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की ओर है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बहाने बनाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल हुई बैठक में भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। ऐसे में सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के साथ बनी सहमति को बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
ये थे प्रभात पांडे। तो आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, और इस दौरान सरकार और विपक्ष ने बजट सत्र के लिए रणनीति तय कर ली है, ऐसा कम से कम दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं। दोनों ही सकारात्मक रुख की बात कर रहे हैं, लेकिन कई सवाल सामने हैं। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी से बात की और सबसे पहले पूछा कि संसद का बजट सत्र क्या पिछले दो सत्रों से अलग होगा।
सदन में कार्रवाई चलाने के लिए जो एक मामूली सहमति होती है वो होनी चाहिए कि हम अपनी बात को कहेंगे, आपकी आलोचना करेंगे या जो हमें कहना है, क्योंकि हम सदन में जो कुछ भी कहते हैं वो देश की जनता को सुनाने के लिए कहते हैं ताकि उसको पता लगे कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। इधर दो एक दिन की जो बैठकें हुई हैं सर्वदलीय, खासतौर से राज्यसभा के सभापति ने जो बैठक बुलाई थी उसमें सरकार ने माना है कि आप जो भी मसले हैं, चाहे जेएनयू का है, चाहे जो रोहित वेमुला वाला मामला है या कानून व्यवस्था का मामला है या दूसरे और जो भी मामले हैं किसानों की दशा को लेकर के है, आप अपनी बात कहिए, हम इस पर बहस कराएंगे, पर इस बहस के अलावा क्या होगा ये देखने की बात है।
विपक्ष का ये एक तर्क रहा है कि सदन चलाना सरकार की जिम्मेदारी रहती है, आप इस तर्क से कितना सहमत हैं और क्या आपको लगता है कि सरकार की ऐसी कोई रणनीति आपको दिखाई देती है जिससे सदन में इस बार सही तरीके से कामकाज हो सके?
हाँ, इसमें दो राय नहीं, ये संसदीय जो व्यवस्था है इसमें सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। असल में जो पीछे की बातें हैं, जो बैकरूम बातें हैं वो कम महत्वपूर्ण नहीं होती। आपने देखा होगा पिछले बार जो शीत सत्र था उसमें जब शुरू के पहले एक दो दिन के बाद मोदी जी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत की जाए जीएसटी को लेकर के, और सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की भेंट हुई थी, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत भी हुई थी, किसी वजह से फिर अंततः वो मामला चला नहीं। अंत के तीन दिन जब राज्यसभा ने कुछ विधेयकों पर बात की वो भी सभापति के हस्तक्षेप के बाद, अन्यथा करीब करीब 50% के आसपास समय जो था वो राज्यसभा का खराब हुआ पिछले सत्र में।
बजट सत्र को लेकर किस तरह की उम्मीदें रखी जा सकती हैं?
देखिए, बजट सत्र एक तो सबसे लंबा सत्र होता है, ये दो हिस्सों में होगा, एक अभी 16 मार्च तक चलेगा, उसके बाद फिर 25 अप्रैल से 13 मई तक चलेगा। इस दौरान जो स्थायी समितियां होती हैं उनकी बैठक होती है, जो जो भी अनुदान मांगे होती हैं अलग अलग मंत्रालयों की बजट में उन पर विचार किया जाता है। तो ये सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है पूरे, अगर एक तरीके से देखा जाए देश के संचालन, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तो इसका जो पहला भाग है जो 16 मार्च तक का है, मुझे लगता है इसमें चूंकि कोई विधेयक वगैरह पर ज्यादा बात नहीं होनी है, सिर्फ रेलवे का बजट, आर्थिक समीक्षा और उसके बाद जनरल बजट, ये तीन चीजें होंगी। उसके बाद जो राजनीतिक इश्यूज हैं उन पर बातचीत होगी। फिलहाल हमें 16 मार्च तक ये उम्मीद करनी चाहिए कि शोरगुल काफी हो जाएगा या जो कुछ भी होना है हो जाएगा। इसके बाद सदन को विधेयकों पर बात करनी चाहिए, खासतौर से आपने देखा कई विधेयक हैं जिनके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कोई ना कोई अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव पड़ता है वो पड़ेगा, इसलिए उसको उन विधेयकों पर, खासतौर से जीएसटी के बारे में, विसिल ब्लोअर, बैंक्रप्सी कोड, रियल एस्टेट वगैरह है, इन सब पर किसी न किसी रूप में बात होनी चाहिए और फैसला होना चाहिए।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और अब छत्तीसगढ़ से एक खास रिपोर्ट। बस्तर छत्तीसगढ़ का वो इलाका है जहां पिछले एक दशक से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग युद्ध सा छिड़ा हुआ है, और इस संघर्ष की ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को दोनों पक्षों की ओर से निशाना बनाया जाता रहा है। कभी पत्रकारों को माओवादी समर्थक बताया जाता है तो कभी पुलिस का मुखबिर। 2 साल पहले पत्रकार साई रेड्डी को पहले पुलिस ने माओवादी बताकर जेल में बंद कर दिया और बाद में माओवादियों ने उन्हें पुलिस का आदमी बताकर उनकी हत्या कर दी। बस्तर के दो पत्रकार पिछले कई महीनों से माओवादी होने के आरोप में जेल में बंद हैं। रिपोर्टिंग के सिलसिले में बस्तर पहुंचे आलोक प्रकाश पुतुल बता रहे हैं बस्तर में पत्रकारिता का हाल।
बुधवार की शाम जब मैं राजधानी रायपुर से बस्तर के लिए रवाना हुआ तो मैंने सबसे पहले बस्तर के आईजी पुलिस शिवराम प्रसाद कल्लूरी को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा कि कल सुबह काम शुरू करने से पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अगली सुबह भी मैंने आईजी पुलिस को संदेश भेजे, एसपी को भी फोन लगाया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। मैं बस्तर के अलग अलग इलाकों में अपनी खबरों पर काम करता रहा और अपनी खबरों का दूसरा पक्ष जानने के लिए आईजी पुलिस और एसपी को हर दिन मुलाकात के लिए संदेश भेजता रहा, फोन करता रहा, लेकिन मेरे संदेश अनुत्तरित रहे। शनिवार को एक गांव वाले ने मुझे बताया, आपकी तलाश की जा रही है, कुछ भी हो सकता है। इस संदेश के कोई 10 मिनट के अंदर बड़े किलेपाल इलाके से एक और संदेश आया, कुछ लोग आपको तलाशते हुए गाड़ियों में पहुंचे हैं, अपने सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। इसके थोड़ी देर बाद मुझे बस्तर के आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी का व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में यह संदेश मिला।
आपकी रिपोर्टिंग निहायत पूर्वाग्रह से ग्रस्त और पक्षपातपूर्ण है। आप जैसे पत्रकारों के साथ अपना समय बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है। मीडिया का राष्ट्रवादी और देशभक्त तबका कट्टरता से मेरा समर्थन करता है। बेहतर होगा मैं उनके साथ अपना समय गुजारूं। धन्यवाद।
कुछ देर बाद बस्तर के एसपी आरएन दास का यह संदेश मुझ तक पहुंचा।
मेरे पास राष्ट्रहित में करने के लिए बहुत से काम है। मेरे पास आप जैसे पत्रकारों के लिए कोई समय नहीं है जो कि पक्षपातपूर्ण तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। मेरे लिए इंतजार ना करें।
बस्तर के आईजी शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने अपने संदेश के नीचे बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर छपी मेरी एक खबर भी पेस्ट की थी, जिसमें पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम और कुछ महिला वकीलों को परेशान किए जाने के मुद्दे पर रिपोर्ट थी। मुझे लगा कि बस्तर के हालात देखते हुए खुद को सुरक्षित समझना गलत होगा, क्योंकि इस बार पुलिस और माओवादियों की लड़ाई की जद में मैं खुद था। मुझे अपनी रिपोर्टिंग का काम अधूरा छोड़कर बस्तर से लौटना पड़ा। तो क्या बस्तर में हालात इतने खराब हैं? यही सवाल मैंने छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव से पूछा।
अभी बस्तर लग रहा है कि पुलिस स्टेट बन गया है या उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुर्भाग्यजनक स्थिति ये दिख रही है कि कोई भी अगर डिसेंट शो कर रहा है, जो मानने के लिए बात किया जा रहा है, उस व्यू से जरा भी अगर किसी का व्यू अलग है तो उसे राष्ट्रहित के विपरीत तक कहकर और प्रताड़ित किया जा रहा है। ये स्थिति आम लोगों के साथ भी है और दुर्भाग्य से ये स्थिति मीडिया के साथियों के साथ भी।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भूपेश बघेल के विचार भी मिलते जुलते से हैं।
अब बस बस्तर में लोकतंत्र नाम की जो चीज रही नहीं, अब बस्तर के लिए तानाशाह हुई है तो वो एसआरपी कल्लूरी है।
रायपुर में प्रेस क्लब के अध्यक्ष और बस्तर क्यों जाऊं मरने शीर्षक से किताब लिखने वाले अनिल पुसतकर मानते हैं कि बस्तर देश की उन सबसे खतरनाक जगहों में से है जहां पत्रकारिता सबसे मुश्किल काम है।
बस्तर की पत्रकारिता तो जो है अभी बहुत ही मतलब इसको बोलना चाहिए कठिन नहीं कठिनतम दौर से गुजर रही है। समानता पत्रकारिता में जो एक महत्वपूर्ण काम होता है सोर्स बनाने का, तो उनको अगर नक्सल मूवमेंट के भी जो गतिविधियां हैं वो चाहिए तो ऑफिशियल अगर स्टेटमेंट चाहिए या ऑफिशियल जानकारी चाहिए तो उनके सोर्स वहां भी रहते हैं। अब वही सोर्स जो है उनके लिए फांसी का फंदा बन रहा है, वो पुलिस के भी प्रताड़ना के शिकार इसलिए हो रहे हैं। पुलिस कहती है कि तुम्हारे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, इससे मार रहे हैं कि वो कहते हैं कि पुलिस से तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध है।
बस्तर में काम करने वाले पत्रकार अविनाश प्रसाद का मानना है कि मीडिया घरानों का दबाव बस्तर में पत्रकारों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है।
देखिए, बस्तर में पत्रकारिता करना एक बहुत बारीक लकीर है तलवार की धार पे चलने के जैसा। कंपनी ये मांग करती है कि आप बस्तर में हैं तो कुछ एक्सक्लूसिव लाएं, और ये सब के चलते हम लोगों को अंदरूनी क्षेत्र में जाना पड़ता है। लेकिन ये लकीर जो है कि कहीं ये सिद्ध ना हो जाए कि आप नक्सलियों के समर्थक हैं, इस लकीर का अगर कोई पत्रकार, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर ये चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है तो पत्रकारों के ऊपर ब्लेम लगता है कि ये नक्सलियों से मिला हुआ है। यदि वो अगर अंदरूनी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नहीं जाता और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्टोरीज करता है और कभी अंदरूनी क्षेत्र में उसको जाना होता है तो नक्सलियों को लगता है कि ये पुलिस का आदमी है।
लेकिन इन सबसे उलट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का दावा है कि बस्तर में स्थितियां पहले की तुलना में सुधरी हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार लगातार इस नक्सलवाद के खिलाफ में एक बड़ी लड़ाई को लड़ रही है। पुरानी सरकारों ने तुष्टिकरण का काम इस नक्सलवाद के रूप में लिया था, इस कारण से ये सभी समस्याएं दूर नहीं हुई हैं। जहां तक पत्रकार की बात करें या वहां के स्थानीय लोगों की बात करें, साथ ही साथ नौजवानों की भी बात करें जो नक्सलवाद से लगातार लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से बहुत बेहतर हालात वहां पर हुए हैं।
हालांकि आम आदमी पार्टी भाजपा प्रवक्ता से सहमत नहीं है। शनिवार को ही बस्तर में अज्ञात लोगों द्वारा आम आदमी पार्टी के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोरी पर हमला किया गया और अब वे दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रही हैं। हमने छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के सचिव नागेश बंछोर से बस्तर की स्थिति पूछी।
बस्तर में दो पहलू हैं, दो पक्ष हैं, एक पुलिस का पक्ष है और एक माओवादियों का पक्ष है। दुर्भाग्य से ये हो रहा है कि जो व्यक्ति चाहे वो पत्रकार ही क्यों ना हो निष्पक्ष रहने का प्रयास कर रहा है उसके ऊपर दबाव है, यानी आपको साइड लेना ही होगा। पत्रकारिता बहुत मुश्किल है, आप पत्रकारिता तभी संभव होती है जब आप किसी क्षेत्र में आराम से मूवमेंट कर सकें, आप कहीं पर भी आ जा सकें, आप अपनी जानकारी जुटा सकें।
लेकिन राज्य के वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार का मानना है कि बस्तर में खतरा केवल पत्रकारिता पर नहीं है।
मैं बस्तर में पत्रकारिता पर अलग से कोई खतरा नहीं देखता हूं, मैं बस्तर के पूरे लोकतंत्र पर एक खतरा देख रहा हूं।
बस्तर में पत्रकारिता का असली संकट क्या है और इससे लोकतंत्र किस हद तक प्रभावित हो रहा है, इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। लेकिन यह तो आप मान लीजिए कि बस्तर में सब कुछ ठीक ठीक तो नहीं चल रहा है और बस्तर से दूर बैठकर केवल अनुमान भर लगाए जा सकते हैं। आलोक पुतुल, बीबीसी छत्तीसगढ़।
और इस तरह की खबरों के मिलने के बाद हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने आईजी कल्लूरी से बात कर उनका पक्ष जब जानना चाहा तो फोन पर दोनों के बीच ये बातें हुई।
सरासर झूठ है, आपके कहना सरासर झूठ है।
नहीं, मैं बात करना चाहूंगा आलोक प्रकाश पुतुल जो बीबीसी के लिए कवर करने गए थे स्टोरी, और उनका ये कहना था कि उन्होंने आपको व्हाट्सएप पर संदेश भेजा जिसके जवाब में
यहाँ कई सारे पत्रकार रहते हैं जो जब भी हम पत्रकार वार्ता लेते हैं हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, रोज खबर लेते रहते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, हम भी साथ देते हैं, वो भी हमारे सुख दुख में आते रहते हैं, उनको हम पत्रकार मानते हैं, है ना। तो सैकड़ों लोग बाहर से आके अपने आप को पत्रकार माने, वो कौन क्या है हम कैसे जानेंगे? क्या आलोक पुतुल जी के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ?
जी, आलोक प्रकाश पुतुल बीबीसी के पत्रकार हैं, उनके पास आई कार्ड है, वो आपको अपना परिचय दे रहे थे, उन्होंने आपको तो उनका ये कहना है कि आपने उनको एक संदेश भेजा जिसका हिंदी तर्जुमा ये है कि आपकी रिपोर्टिंग निहायत पूर्वाग्रह से ग्रस्त और पक्षपातपूर्ण है।
यस, इट इज टोटली प्रेजुडिशियल, आई हैड गॉन थ्रू इट। He did not represent our version. It was not a balanced coverage.
आपने ये भी कहा कि आप जैसे पत्रकारों के साथ अपना समय बर्बाद करने का कोई अर्थ नहीं है।
नहीं, why are you speaking on behalf of Alok Prakash Putul?
जी, you should have called me. मैं जानना चाहता था कि
no, I don't know who you are.
मैं ये जानना
if I had written something to Alok Prakash Putul on his personal WhatsApp ID, he should ask me and I'll respond to him. Who are you? I don't know who you are.
जी, मैं बीबीसी की तरफ से आपसे जानना चाह रहा था तो आपका वर्जन
थोड़ी होता है तुम, मैं भी बोलो मैं ओसामा लादेन हूँ तो लादेन हो जाऊंगा क्या? I don't know who you are.
जी,
मैं not met earlier.
मैं आपको अपना परिचय भी दे रहा हूँ.
देखो, इतना फालतू टाइम मेरे पास नहीं है, संक्षिप्त में बताइए.
लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये कहा था कि मेरे पास मीडिया और प्रेस कर
नहीं बताऊंगा. आलोक पुतुल को कुछ प्रॉब्लम है, लेट हिम स्पीक टू मी, आई विल रेस्पोंड. आई डोंट नो हु यू आर यार.
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे,
कॉल्स एवरी डे, वी आर अनएबल टू डिस्चार्ज आवर पब्लिक ड्यूटीज.
लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब
आंसरिंग टू क्वेश्चन कलूरी जर्नलिस्ट और ब्लडी हूएवर यू आर
कलूरी साहब, जब
जर्नलिस्ट इज अ पर्सन हु अटेंड्स आवर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, whom we know, whom we see every day. Every Tom, Dick and Harry calls on a telephone and he wants a prolonged interview like this. You think we are maintaining some center, communication center? Please put down the phone. If Alok Prakash Putul has some issue, ask him to call me.
मतलब आप इसको ये मान रहे हैं कि आपको परिचय फोन पे देना ठीक नहीं है? जो लोग आपके जो आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस
को फोन अटेंड नहीं कर सकता, हमको यहाँ पीआरओ नहीं है.
जी, बात पीआरओ की नहीं है, सिर्फ बात इतनी सी है कि आप पत्रकारों के लिए जैसे जहाँ ये बात आई कि आप
सुनो, पत्रकार मतलब ये जगदलपुर में रहता है सैकड़ों पत्रकार, उनको हम पत्रकार मानते हैं, जिनको हम जानते हैं. कोई भी फोन करके कुछ भी बोल ले, मैं पत्रकार हूँ, कैसे माने?
नहीं, जगदलपुर में जो
आप पत्रकार
जगदलपुर में जो काम कर रही थी पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम, उनका भी आरोप था कि वो पुलिस.
और ये कहते हुए आईजी कलूरी ने फोन रख दिया.
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है.
और अब बात हरियाणा की. हरियाणा में जाट आंदोलन अब भी जारी है. सोनीपत में कल भड़की हिंसा में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई. हालांकि हरियाणा के एक मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का दावा है कि आंदोलन के असर वाले 80% इलाके में शांति बहाल हो गई है. उनका दावा है कि आज पूरी तरह सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी. हमारे सहयोगी वात्सल राय ने कैप्टन अभिमन्यु से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि फिलहाल हरियाणा में हालात कैसे हैं.
हरियाणा में वर्तमान में जहाँ जहाँ जाम लगे हुए थे, लगभग 80-90% जाम वापस ले लिए गए हैं. जब भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ में जो आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, उनसे बातचीत के बाद जो विश्वास उनको वहां से मिला है कि जाट समाज को केंद्र और हरियाणा राज्य में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे तमाम स्थानों से आंदोलन वापिस हो रहा है, लगभग स्थिति नियंत्रण में है कुछ एक स्थानों को छोड़ करके, और हमें उम्मीद है कि सुबह तक जाम खुलेंगे पूरी तरह से. और प्रशासनिक अधिकारी पीस कमेटीज की बैठक के साथ साथ 20 मार्च निकाल करके समाज में एक विश्वास कायम करने का प्रक्रिया करेंगे. मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हरियाणा वापस अपनी पटरी पर लौटेगा.
इस आंदोलन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका कोई नेता नहीं है, तो ये बात जो सरकार पहुंचा रही है वो आगे तक कैसे जा रही है और कौन लोग हैं जो अभी सड़कों पर जमे हुए हैं?
इस आंदोलन के 2 पक्ष रहे हैं. एक तो इसमें ज्यादातर आरक्षण की मांग को लेकर के काम करने वाले संगठन जो लंबे समय से काम कर रहे थे और उनके साथ में जुड़ा हुआ वर्ग, और दूसरा एक आरक्षण के आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेकते हुए इसको हिंसा के दौर में ले जाने का काम जिन्होंने किया, वो एक राजनीतिक षड्यंत्र भी इस आंदोलन के एक पक्ष बनकर के सामने आया. हमारा प्रयास रहा कि जो ईमानदारी से जो केवल आरक्षण की मांग को लेकर के आंदोलन, जो संविधान के तहत जो शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन करने को काम कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाए. लेकिन जो भी कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रकल्प कर रहे हैं, उनको इस पूरी बातचीत से अलग रखते हुए इसको समाधान की तरफ आगे बढ़ाया है. धीरे धीरे जो उपद्रवी तत्व हैं, वे समाज में एक्सपोज भी हुए हैं. ये बात सही है कि एक बहुत बड़े पैमाने पर जगह जगह पर जो आंदोलनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, तो उन सभी स्थानों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर के बातचीत करना अपने आप में एक बहुत लंबी कवायद रही, जिसको सरकार को उसमें एक बहुत वाइड स्प्रेड लीडरशिप होने के कारण बातचीत करने में दिक्कतें जरूर आई।
आप राज्य के वित्त मंत्री भी हैं, सोचेम की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, आपका क्या आकलन है?
देखिए, इस समय हमारे पास किसी भी प्रकार के नुकसान का आकलन करने का कोई आधार नहीं है। ये सही है कि नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। पूरी सरकार इस वक्त इस आंदोलन को समाप्त करने में, ताकि हरियाणा में शांति की बहाली की जा सके, जानमाल की सुरक्षा की जा सके, और उसके बाद ये नुकसान का आकलन और किस प्रकार से गरीब आदमी, जो व्यापारी हो या कोई भी आदमी जिसकी जान का नुकसान या माल का नुकसान हुआ है, वो उनकी भरपाई कैसे की जा सके, इस दिशा में बाद में हम काम करेंगे।
राज्य के मंत्री होने के नाते आप क्या भरोसा दे सकते हैं, कब तक हरियाणा में स्थिति सामान्य हो जाएगी?
हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द ये स्थिति सामान्य हो जाए। हमने हर वर्ग से अपील की है कि आपस में भाईचारा बनाए रखें। सरकार की तरफ से लगातार यह प्रयास रहा है कि जान माल की हानि को रोकते हुए इस आंदोलन को जल्द से जल्द समाप्त करके सामान्य स्थिति हरियाणा में कायम की जाए।
ये थे मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल राय। और आपके भी बता दें कि बीबीसी संवाददाता सलमान रावी इस वक्त रोहतक पहुंच चुके हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले कार्यक्रम में आपको रोहतक के ताज़ा हालात की जानकारी सलमान रावी के जरिए दें। बहरहाल अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और हमारी सहयोगी प्रगति सक्सेना इस वक्त मौजूद हैं तमाम अखबारों के साथ। जी प्रगति, बताएं।
जी इकबाल साहब, आज 3-4 खबरें हैं जो सभी अखबारों में हैं, जैसे कि आपने जिनका जिक्र किया, हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन, और JNU में आरोपी छात्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आरोपी छात्र अंदर हैं और पुलिस बाहर बैठी है विश्वविद्यालय के, और आज से बजट सत्र की शुरुआत है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई पानी आपूर्ति के बारे में, और कहा कि आप खुद एसी चैम्बरों में बैठे रहते हैं और चाहते हैं कि हम आदेश पारित करें, और उन्होंने हरियाणा को पानी की व्यवस्था करने को कहा और केंद्र से भी रिपोर्ट मांगी इस बारे में। और बहरहाल इस सब का नतीजा यह है कि आज से दिल्ली में पानी की आपूर्ति बहाल हो जाएगी। जी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद एक नवभारत टाइम्स में खबर है कि 94 वर्ष की उम्र में दिलीप कुमार की कोर्ट में पेशी होगी। ये मामला है, डेकन सीमेंट्स ने फाइल किया है, इससे उन्होंने कुछ पैसा निवेश किया था, जो उसको वापस जब उन्होंने मांगा तो उनके, दिलीप कुमार साहब के जो है, चेक बाउंस हो गए, तो वो 1 करोड़ रुपए का कुछ मामला है। ये सायरा बानो ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें वहाँ पेश होना पड़ रहा है अदालत में। नेता ना करें कोटे का फैसला, ये RSS प्रमुख भागवत ने कहा है। उन्होंने कहा है कि एक गैर राजनीतिक समिति का गठन होना चाहिए कोटे का आरक्षण का फैसला लेने के लिए। और बस्सी JNU छात्रों पर बोले हैं कि सरेंडर नहीं किया तो पुलिस के पास कई विकल्प, छात्रों की गिरफ्तारी पर तमाम तरह का तकरार जारी है। ये नई दुनिया की खबर है। PM ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि लेने से इनकार कर दिया और इसके लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। उन्होंने बड़ी सारी उम्मीदें जताई छात्रों से, और उसके उनके भाषण के दौरान जो है, बहुत कुछ छात्रों ने संगठन बनाने के लिए नारेबाजी भी की।
जी बहुत शुक्रिया प्रगति आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वक्त हो चला है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी दलों से सहयोग की उम्मीद जताई है। सीरिया में आंशिक युद्ध विराम के रूस और अमेरिका के संयुक्त वक्तव्य के कुछ देर बाद ही सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने संसदीय चुनावों की घोषणा भी कर दी है। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि अमरीकी सुरक्षा एजेंसी FBI के बरक्स एप्पल कंपनी ने जो रुख लिया है, वो उसके लिए एप्पल के प्रमुख टिम कुक से सहानुभूति रखते हैं। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति पद के प्रमुख उम्मीदवार टेड क्रूज ने अपने चुनाव अभियान के प्रवक्ता को निकाल दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील की है कि पूर्वी यूक्रेन के संदर्भ में वो मिन्स्क समझौते का आदर करें। राष्ट्रपति ओबामा ने पूर्वी यूक्रेन में जल्द ही चुनाव कराने पर समझौते की अहमियत का भी जिक्र किया। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजित सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।